ओम शांति। मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में शिपिंग एविएशन और टूरिज्म विंग में पधारे हुए हमारे सभी मेहमानों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विंग की ये कॉन्फ्रेंस 2018 जिसका थीम है रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये बहुत ही सुंदर एक लक्ष्य को लेकर के हम सभी आप और हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले इस तीन दिन में आप इतना अपने आप को भरपूर महसूस करोगे, आप अपनी उम्मीद से भी ज्यादा यहाँ से पा करके जाएंगे और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। वैल्यूज के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, एम्पावरमेंट के बारे में, जिससे आपका आने वाला जीवन जो है वो प्रकाशित होगा। तो मैं आमंत्रण पहले करना चाहूंगी हमारी बहनों को कि आकर के मंच पे आसीन हमारे मेहमानों का फूलों से और बैजेस से स्वागत करें। इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाते हुए मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगी जिसके लिए मैं कहना चाहती हूं कि एक वो बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति है मीडिया के फील्ड में और वो पिछले 23 सालों से ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड है। तो मैं कोमल भाई को आमंत्रित करना चाहूंगी कि जो पिछले 16 सालों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, आप प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत कार्य किया हुआ है। आपने जी न्यूज, लाइव इंडिया, पंजाब केसरी आदि अलग अलग जो है चैनल्स पे रिपोर्टिंग की हुई है। आप साथ साथ में एक डायनेमिक पर्सनालिटी है। आपने जो है दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका आदि में अपने लेख और जो है फीचर्स प्रिंटिंग के लेख लिखे हुए हैं। आप एक बहुत ही अच्छे कुशल वक्ता के साथ साथ ट्रेनर और रिपोर्टर भी है। आपको बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया हुआ है, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से रिनाउंड रिपोर्टर अवार्ड, राजीव गांधी एक्सलेंस अवार्ड, हरियाणा गौरव अवार्ड आदि से भी सम्मानित किया हुआ है। वर्तमान समय हेडक्वार्टर्स मधुबन में रहते हुए आप गॉलीवुड स्टूडियो, पीस न्यूज और HOD से कनेक्टेड है। आप शांतिवन के PRO है और एक एडिटर है शिव आमंत्रण पत्रिका की। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप ब्रह्मा कुमारी के बारे में हमको अवगत करें।
ओम शांति। आप लोग जोर से बोलिए ओम शांति, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का परिचय भी यहीं से शुरू होता है। और मंच पे हमारे कमलेश दीदी और नेहा बहन और सभा में आप सभी हमसे बड़े हमारे पिता तुल्य समकक्ष भाई और बहनें और माताएं, ब्रह्मा कुमारी का परिचय यहीं से शुरू हो जाता है। हम लोग अभी गुलदस्ता बहन दे रही थी तो दीदी ने कहा आप, मैंने कहा आप। हमारे भारत की संस्कृति है कि यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, ऐसे पहले कहा गया है। आप लोगों ने सुना भी होगा, जहां नारी का सम्मान नहीं है वहां पे आप अच्छे समाज की परिकल्पना आप सोच नहीं सकते हैं। बाबा ने आके इस ब्रह्मा कुमारी की बागडोर भी जो है बहनों के हाथ में ही है। दुनिया की एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसका संचालन 100% सिर्फ बहनें करती हैं। अभी तक दुनिया की कोई ऐसी संस्था नहीं है, तमाम जो आज विधानसभा लोकसभा में तमाम विवाद चलता है कि महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए, 33% आरक्षण होना चाहिए, 20%, हमारे यहाँ 100% आरक्षण है। लोग कहते हैं कि नारी कुछ नहीं कर सकती है, हमने करके दिखाया, हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहनों ने करके दिखाया है कि नारी अपने संतान को तो क्या, दूसरे को भी इंसान बना सकती है। और अगर मैं आज यहां मौजूद हूं तो उसका एक उदाहरण भी हूं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बारे में हम आपको बहुत मोटे तरीके से बताएंगे, अधिकतर लोग जानते होंगे। कितने लोग ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानते हैं? पांच % शायद नहीं जानते। इसमें अब तो लगभग हर टेलीविजन और मीडिया का जो क्षेत्र है उससे हर कोई जानने, हर चीज जानने लगा है। सबसे पहले एक मैं बात बताता हूं कि ब्रह्मा कुमारी को आप किस रूप में जानते हैं, धार्मिक या आध्यात्मिक? कितने लोग धार्मिक रूप में जानते हैं और कितने लोग आध्यात्मिक रूप में जानते हैं? बहुत अच्छा, मुझे जानकर इस बात की प्रसन्नता है कि आप लोग आध्यात्मिक और धार्मिक की परिभाषा समझते हैं। सबसे पहले हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक है। अध्यात्म इंसान इंसान को जोड़ता है, हर एक को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, सद्भावना बढ़ाता है, आपसी प्यार बढ़ाता है, एकता बढ़ाता है, परिवार का संयोजन करता है, आंतरिक शक्ति बढ़ाता है। और धर्म, धर्म क्या करता है? धर्म तोड़ता है, जोड़ता नहीं है, उन्माद पैदा करता है, संघर्ष पैदा करता है, आंदोलन पैदा करता है। अभी मेरे पास एक ब्रेकिंग खबर आई कि अभी आज लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में कासगंज एरिया है, वहां पे इनकलाब जिंदाबाद की तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो वहां पे दंगा हो गया और भारत पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान मुर्दाबाद ऐसे नारे लगे और दो संप्रदायों में दंगा हो गया। किस आधार पे हुआ है? किस आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे हुआ। अगर यहां अध्यात्म होता तो अध्यात्म इस शरीर के आडंबर से ऊपर ले जाता है, स्त्री पुरुष के भान से ऊपर ले जाता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम सब एक परमात्मा के संतान हैं। लेकिन किस रूप में है यह काम अध्यात्म करता है। और ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक आंदोलन है, एक विकास का आंदोलन है, चारित्रिक विकास का आंदोलन है, यूथ डेवलपमेंट का आंदोलन है, नारी शक्ति का आंदोलन है, घर परिवार को अच्छा बनाने का आंदोलन है, हर वर्ग के क्षेत्रों में सशक्तिकरण करने का आंदोलन है। तो अध्यात्म, ब्रह्मा कुमारी संस्था आध्यात्मिक है, धार्मिक नहीं। अभी तो कन्फर्म हो गया ना, आध्यात्मिक है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो एथिक्स है, लोग कहते हैं, पहले भ्रम था ब्रह्मा कुमारी के बारे में कि यहां तो महिलाएं रहती हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लोग परिवार तोड़ देते हैं, भाई बहन का संबंध बना देते हैं। भाई बहन का संबंध तो भगवान नहीं बना के भेजा, ब्रह्मा कुमारी ने कहां से क्रिएट कर दिया? उसमें भगवान के बच्चे जब हम लोग होते हैं तो जब हम एक मंदिर में जाते हैं भगवान के और स्त्री पुरुष दोनों जाते हैं तो हम क्या कहते हैं उनको? हे भगवान कहते हैं ना, अपना माँ बाप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो भगवान को माँ बाप स्त्री पुरुष दोनों मानते हैं तो क्या हो गए? वहां तो ये नहीं कहते हैं कि आप, मैं उनकी स्त्री हूं, मेरी पत्नी हूं, आप भी बाबा कहते हैं, आप भी ईश्वर कहते हैं और पत्नी भी ईश्वर कहती है। तो ये संबंध तो भगवान ने बना के भेजा। शारीरिक संबंधों के लिए जरूर थोड़ी डिफिनेशन है अलग, लेकिन जब शरीर से हम बाहर निकलते हैं, आप सोचिए ना कि आज अलग अलग कपड़े में लोग बैठे हैं तो क्या आपकी आइडेंटिटी अलग अलग है? क्या आपकी आइडेंटिटी लाल है, आपकी आइडेंटिटी सफेद है, आपकी आइडेंटिटी हरी है? कपड़ों से आइडेंटिटी तो नहीं है ना, या कपड़ों से आइडेंटिटी है? अब बताइए कितने लोग जानते हैं कि कपड़ों से आइडेंटिटी है? कपड़ों से आइडेंटिटी नहीं है, कपड़े तो आप कभी भी बदल सकते हैं। इस तरह से शरीर हमारा कपड़ा है। जब हम इस किसी के घर, जब किसी के यहां पैदा हुए थे तब, और शरीर छोड़ने के बाद और पैदा होने के पहले हमारी आइडेंटिटी क्या है? ब्रह्मा कुमारी वह ज्ञान सिखाती है, असली परिचय देती है। क्योंकि जब आपको अपना अस्तित्व मालूम पड़ जाएगा, आपको अपना मालूम पड़ जाएगा कि हम हैं कौन, तो आपको दुनिया देखने में बहुत सहज होगा। कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं, सब अपने दिखेंगे। आजकल तो घर में भी अपने लोग नहीं है, आपके बच्चे पैदे होते हैं घर में चार लोग हैं, चार अपने नहीं है। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान और योग और उसकी एजुकेशन सही अस्तित्व का पता बताती है, दुनिया में कोई नहीं पता बताता है, सब लोग अलग अलग भटकाने का काम करते हैं। ब्रह्मा कुमारी का काम ये है। अब रहा सवाल है कि ब्रह्मा कुमारी नाम क्यों है, मैं एक एक चीज करके बता रहा हूं उसमें। ब्रह्मा कुमारी नाम क्यों है, ब्रह्मा कुमार क्यों नाम नहीं है, इसका सवाल का उत्तर यह है कि भारत माता क्यों है, भारत पिता क्यों नहीं है, लक्ष्मी नारायण क्यों है, नारायण लक्ष्मी क्यों नहीं है, सीता राम क्यों है, राम सीता क्यों नहीं है, राधे कृष्ण क्यों है। पहले से ही हम क्यों ऐसी परंपरा बनाए हैं कि राधे का नाम पहले, कृष्ण का नाम पीछे, सीता का राम आगे, राम का नाम पीछे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, क्यों? कभी हमने इसके बारे में सोचा नहीं है। कभी आप लोगों ने सोचा है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस दुनिया को अच्छा बनाने में, इस दुनिया को स्वर्ग बनाने में भगवान ने अगर किसी को आगे रखा वो कौन था? महिलाएं थी। इस भारत का उत्थान किया इसलिए भारत माता। राम को राम बनाने में सीता की बड़ी भूमिका रही, तो किंग मेकर बड़ा होता है, किंग बड़ा नहीं होता है। तो राधे, सीता, लक्ष्मी नारायण, इस परमात्मा ने इस दुनिया में आके अगर देखा कि इस समाज के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष, और कोई भी अगर एक पहिया खराब हो जाए तो ना तो आपकी गाड़ी चल सकती, ना आपकी जिंदगी चल सकती है, ना ही परिवार की जिंदगी चल सकती है। हम एक पहिया को तो बहुत हेल्दी रखते हैं लेकिन दूसरे पहिये को केयर करना छोड़ देते हैं, तो क्या जीवन अच्छा चल सकता है? आपके ही पास अगर दो पैर और एक पैर खराब हो जाए तो आप चल सकते हैं? परमात्मा ने आके माताओं बहनों के सर पे ज्ञान का कलश रखा और इस दुनिया को बदलने का जिम्मा सौंपा। ऐसा नहीं है कि भाइयों की भूमिका नहीं है, क्योंकि बिना पांडवों के शक्ति नहीं चल सकती, तो दोनों का, लेकिन जो जिम्मा सौंपा वो माताओं बहनों के सर पे रखा, इसलिए उसकी गाथा में लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय कहा गया। इसमें किसी को संशय है इस बात में, या किसी के पास अगर वो डेफिनेशन हो तो बताइए। ये हो गया ब्रह्मा कुमारी जिसका नाम। अब दूसरा है कि ब्रह्मा कुमारी करती क्या है, आपके नजर में क्या करती है ब्रह्मा कुमारी? ओम शांति बोलती है, ज्ञान सुना देती है, या घर बार तोड़ देती है? ऐसा भी लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी में, जब हम भी संस्था में जुड़े थे ना पहले पहले, तो हम तो यंग थे, 11th क्लास में थे तब से जुड़े, तो हमारे घर में गांव में तो बड़ा हल्ला हो गया। तेरे पता नहीं कहां कहां से वो सफेद साड़ी वाली लड़कियां आई हैं, हमारे लड़के को तो ले गई, पूरा हल्ला हो गया। इनके लड़के, हम लोग जब पढ़ते थे साथ में तो हम 10-12 का हमारा यूथ का ग्रुप था, हम सब जाने लगे तो पूरा उस इलाके में हल्ला हो गया, शोर हो गया। कह रहे ये तो पता नहीं कहां से सफेद सफेद साड़ी की लड़कियां आई हैं, वो तो सारे लड़कों को ले जा रही हैं। तो लोगों को ये लगा कि ब्रह्मा कुमारियां तोड़ती हैं, बड़ा बहुत विरोध हुआ। लेकिन जब देखा कि जीवन में बदलाव हुआ और हमारी बहन जी एक बार हमारे घर चली गई, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को ये सोचने की चीज है कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में जो लोग कॉमन सोचते हैं, तो बहन जी, हमारी माता जी ने पूछ लिया बहन जी से कि बहन जी हमको डर लगता है कि हमारे लड़के को लेकर चली जाएंगी। तो उन्होंने बोला कि इतने सारे भाई बहन हैं, इनकी जीवन बदल गया है, तो इनको कहां हम लेके जा रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा कुमारियां इस संसार को बनाने के लिए, आपके परिवार को बनाने के लिए, आपके जीवन में शांति लाने के लिए, आपके जीवन में तरक्की करने के लिए काम करती हैं। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान किसी इंसान का ज्ञान नहीं है। और यह ज्ञान जब आपका असली ज्ञान आपको हर जगह मिले तो समझिए कि अगर इस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन सब जगह हो तो निश्चित तौर पर समाज का बदलाव हो सकता है। आज देखिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान महिलाओं में बेटी बचाओ का काम ब्रह्मा कुमारी संस्थान कर रही है। आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बहनों को जितना सम्मान मिलता है मुझे लगता है कि दुनिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा। हमारे यहाँ बहनें हमको कह दें कि धूप में खड़े रहो तो भाई एक मजाल नहीं हिल जाए, तब आप यहाँ पे बैठे हैं तो जो इन्वायरमेंट देख रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर में जो कण लगा है ये इसका फॉर्मेंटिंग वहां से है। आज बेटी बचाओ का सबसे बड़ा उदाहरण ब्रह्मा कुमारी संस्थान, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण ब्रह्मा कुमारी संस्थान, नारी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण ब्रह्मा कुमारी संस्थान। ग्राम विकास के लिए हम लोग काम करते हैं, ये बहनें गांव गांव में जाके लोगों को कृषि करना, आज हम लोग हमारे यहाँ की यौगिक खेती चलती है, यौगिक खेती के बारे में बताते हैं। और यौगिक खेती क्या है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा फसलों पर प्रभाव पड़ता है। कई बार हम देखते हैं ना जब वो खेतों में जब आपका घर अच्छा बन रहा होता ना किसी का घर तो उस पर मटके लगा देते हैं। क्यों मटके लगाते हैं? नजर न लगे। किसकी नजर? किसकी नजर न लगे? अपनी ही नजर न लगे। अब आप बताइए आपकी नजर इतनी तगड़ी है कि लग जाएगी तो मकान खराब हो जाएगा। वो लोग फसलों में डाल देते हैं, वो फसल खराब हो जाती है, उस पर धागा बांध देते हैं। क्यों? काला धागा बांध दो ताकि नजर जाए तो उस पर टिक जाए। तो आपकी नजर से अगर वो बिल्डिंग खराब हो सकती है तो आपकी नजर से क्या बिल्डिंग ठीक नहीं हो सकती है? भाई अगर आपकी नजर किसी की नकारात्मक नजर से किसी की फसल खराब हो जाती है तो अगर अच्छी नजर हो तो फसल ठीक भी तो हो सकती है। वो योगी खेती हमारे यहाँ चलता है। वो योगी खेती यही है कि आप योग में या ईश्वर की याद में रहते हैं, स्पिरिचुअल वे में रहते हैं तो आपकी नजरों में ताकत आ जाती है, आपकी वाणी में ताकत आ जाती है। इसलिए पहले के जो ऋषि ऋषि थे वो लोग क्या करते थे, कहते वो श्राप दे दिया, क्योंकि वो व्यर्थ नहीं बोलते थे, अपने संयम रखते थे। और यहाँ का ज्ञान आपके जीवन में संयम लाता है। तो जो आपकी नजर होती है वो डिवाइन हो जाती है, जो आपकी बोल होती है वो वरदान हो जाती है। किसानों को नशा कैसे छोड़ दें, उनके परिवार में स्वच्छता कैसे आ जाए, सफाई कैसे, उसके लिए हमारा ग्राम विकास पूरा आंदोलन चलाता है। इसको अभी राजस्थान, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारी शोध थी इस पे उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी गवर्नमेंट हमारा कार्यक्रम करा रही है सब जगह, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अभी बिहार में कैंपेन निकला था ग्राम विकास सशक्तिकरण अभियान, सारा खर्चा सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में निकला था, सारा खर्चा सरकार ने दिया, उसने देखा। दूसरा यूथ का, आज सबसे बढ़िया कि आज लोग कहते हैं कि यूथ घर में आपके बच्चे आपके कहना ही नहीं मानते हैं। आप बताइए कि आपका मन आपका कहना कितना मानता है? जब आपका मन आपका कहना नहीं मानता है तो वो तो उसके ऊपर भी तो मन है, फिर आपका कहना कहां से मानेगा? तो आपका मन आपका कहना माने वो कैसे हो सकता है, उसका ये तरीका बताते हैं बहने ब्रह्मा कुमारी जी यूथ के लिए खास। क्योंकि यूथ में मानसिक और शारीरिक दोनों एनर्जी बहुत तेज भाग रही होती है, ऐसे में डाइवर्जन की काफी संभावना रहती है। अगर प्रॉपर उनको आप गाइडेंस न दीजिए, प्रॉपर उनको रास्ता न बताइए, प्रॉपर उसको परवरिश न कीजिए तो जब तक आप सोचेंगे तब तक पता पड़ेगा कि वो कहां से कहां चला गया। क्योंकि जीवन का जो सबसे अमूल्य टाइम होता है यूथ का होता है, तो हमने कभी नहीं सोचते हैं क्योंकि हम खुद अपने बारे में नहीं सोच पा रहे, तो दूसरा कैसे हमारे बारे में सोच सकता है। यूथ के लिए हमारे यहाँ काम, हमारा यूथ विंग है, पूरे देश भर में टच डिलाइट करके प्रोग्राम एक हम लोगों का आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स ने हमको अप्रूव किया हुआ है। वो सारे स्कूलों में कॉलेजों में बच्चों को जाकर ये लोग पढ़ाती हैं, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, कम से कम 46,000 बहनें ऐसी डेडिकेटेड है हमारे संस्थान में, 46,000 किसी घर में चांद जवान बड़ी बेटियां हो जाए, बड़े लड़के हो जाए तो उसका सब दुखने लगता है। हमारे यहाँ 46,000 बहनें डेडिकेटेड हैं जो पूरी दुनिया भर में ब्रांच चलाती हैं, इतना बड़ा आप सोच सकते हैं। हमारे जैसे लाखों यूथ हैं, मैं खुद एक ग्रेजुएट हूं, मैं खुद बीएससी एजी में पढ़ा लिखा हूं, एमजेएमसी में पत्रकारिता में किया हूं, मैं बाहर नौकरी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा जुनून पैदा किया कि जो आज हमको लगता है कि नहीं अगर हमारी जिंदगी अच्छी बनी तो आपकी भी बननी चाहिए, कोई आडंबर नहीं है इसमें। इसके बाद है हमारा मेडिकल प्रभाग, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर प्रभाग है, हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन में हम लोगों ने डिप्लोमा डिग्री कोर्स करके अभी 12 यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने मेमोरेंडम किया है, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से लेकर कोटा यूनिवर्सिटी, भोपाल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में हमारे कोर्स चल रहे हैं ताकि किसी तरीके से यूथ में इसका फूट जाए, नैतिक शिक्षा उनके अंदर बढ़े। आज हमारे पास सब कुछ है, संस्कार हमारे पास नहीं है। अरे हम इसको कहते हैं कि हम विकसित हो गए, हम ऊंचाई पे चले गए, और पता पड़ता है कि आज हम घर के बगल में घर का नहीं देख रहे हैं। मानवता खत्म हो गई। तो जहां मानवता नहीं है वहां विकास नहीं है, और यही वजह है कि दुनिया में इतनी लंबी इतनी तेजी से ट्रेजडी बढ़ रही है। तो इस तरीके से एजुकेशन में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, बार यूनिवर्सिटी में हम लोग का एग्रीमेंट चल रहा है, कोर्स डिप्लोमा डिग्री एमबीए सब चल रहा है, और इसमें हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर इस तरीके से कर रहे हैं। अभी टेक्निकल एजुकेशन में हमें सरकार ने दिया कि आप ऑनलाइन भी अपना एजुकेशन बढ़ाओ। मोदी जी ने अभी हमारे जो 80 साल का कार्यक्रम था तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि आप अपने एजुकेशन को बढ़ाइए। मोदी जी हमारे यहाँ 3-4 बार पहले भी आ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नशा मुक्ति, नशा सबसे बड़ी बुरी आदत है आजकल। हम बच्चों को तो बचाते हैं कि बच्चे नशा नहीं करना, जब बड़े होते हैं तो हम नशा करने लगते हैं। माना कहते हैं कि जब बच्चा बुद्धिजीवी हो जाएगा तो नशा नहीं करेगा, ऐसा माने कहते हैं कि जब बड़ा हो जाएगा तो बुद्धिजीवी हो जाएगा। तो बचपन में बुद्धिजीवी नहीं तो नशे से हम बचाते हैं, और जब बुद्धिजीवी हो जाते तो हम नशा करने लगते हैं। अरे ये कौन सा ज्ञान है? आप सोचिए ना, आप अपने बच्चों को करने देते हैं, लेकिन हम और आप करते हैं जो बड़े होने के बाद। अब आप सोचिए कि युग कैसा है कि हम छोटे बच्चों को कहते हैं कि भाई तुम नशा मत करना, नहीं नहीं बिगड़ जाएगा, और जब पता पड़ता है कि जब हम बुद्धिजीवी हो गए तो नशा करना शुरू कर दिया कि इसकी हिम्मत चलता नहीं, तो इससे तो बेटर के बच्चे हैं ना। फिर ये समय का चक्र है, ऐसी स्थितियों से ब्रह्मा कुमारी बचाती है। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान ऐसी स्थितियों से बचाता है, यहां के एथिक्स ऐसी स्थितियों से बचाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना के बारे में हम 2 लाइन बताएंगे आपको। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की स्थापना इस पूरे सृष्टि चक्र की बहुत बड़ी घटना है जो हमारी और आपकी सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि समय बदलता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जब अच्छा से बुरा और बुरा से अच्छा होता है, जब इस चक्र पूरा होता है, तब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो स्वयं ईश्वर करता है। और कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर, 4 युगों का युग बना हुआ ना, सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग। यह चक्र जब पूरा होता है और कलयुग खत्म होता है और जब सतयुग चालू होने होता है, तो उसके बीच का जो समय होता है, क्योंकि एक कलयुग बुरा युग और सतयुग श्रेष्ठ युग, बीच का जो संधि युग होता है, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहां इंसान एक कलयुग में आदमी से असुर तुल्य बन गया है। आज इंसान असुर तुल्य है या नहीं, कितने लोग मानते हैं कि नहीं है, और कितने लोग मानते हैं कि है, जरा हाथ उठाइए, इसके बारे में आज हमको सोचना पड़ेगा। कितने लोग मानते हैं कि इस आज का इंसान असुरों से भी ज्यादा खतरनाक है? नहीं, मैं देखिए, ये हमको रियलाइज करने का वक्त है। ये हमारी आपकी प्रेरणा नहीं है, ऊपर वाले की प्रेरणा है आपके लिए। पहले के जमाने में हम कहते थे रामायण महाभारत में कि रावण असुर था, रावण शराब पीता था, रावण मांस खाता था, रावण हिंसा करता था। उसने एक सीता को चुराया, वो भी मर्यादित तरीके से ले गया, उसके साथ गलत नहीं किया। उसका साइन देखिए ना रावण का क्या था। और आज के समय में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही जिसका शास्त्रों में जिक्र तक नहीं है, तो कौन सा युग है? आज रेप की घटनाएं होती हैं, उसके बाद भी ऐसे काम होते हैं जो आदमी की रूह कांप जाती है। उस समय के तो असुर भी अच्छे थे, आज के इंसान से तो बेटर थे। रावण कम से कम मर्यादित तो ले गया, सीता के साथ कोई गलत तो नहीं किया, लेकिन आज का इंसान, आज तो भाई बहन के संबंध तक पवित्र नहीं है, बाप बेटी के संबंध कलंकित हो रहे हैं, तो कौन सा युग हो गया है? क्या हम इसको इंसान कहेंगे? हम विकसित इंसान कहेंगे? दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहेंगे? कहां से हो गया है? आज आदमी की मर्यादा निम्न स्तर माइनस में है, आदमी नैतिक मूल्यों से माइनस स्तर पे है। आप ऐसे में जहां आदमी की नैतिक मूल्यों का माइनस स्तर में जा रहा हो, आप अच्छे समय और अच्छे संस्कार और अच्छे समाज के और अच्छे घर अच्छे परिवार की अच्छे माहौल की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप क्या कल्पना की जा सकती है? तब परमात्मा को आना पड़ता है, और परमात्मा आके नई दुनिया बनाने के लिए फिर से इंसान को इंसान, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का काम करता है। और इस संस्था की स्थापना भी वही घटनाक्रम का हिस्सा है, वही घटना है। सन 1936 में परमात्मा शिव का इस दुनिया पर अवतरण हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में। वो दादा लेखराज थे, वो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, उनके तन में परमात्मा का अवतरण हुआ और उन्होंने कहा कि ये दुनिया नहीं बनानी है, और माताओं बहनों को आगे रख करके इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसलिए हमारे यहां कोई गुरु गद्दी का मामला नहीं है, कोई हमारे यहां गुरु नहीं। हमारे दादी जानकी हैं, 102 साल की हैं, दुनिया की पहली एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की हेड हैं, और आप उनसे जाके मिल सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं, आपको लगेगा नहीं कि नहीं ये बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो इस संस्था की स्थापना स्वयं परमात्मा शिव ने की है, और यहां जो लोग भी मेडिटेट करते हैं खुद को परमात्मा से जोड़ते हैं, क्योंकि इंसान के साथ हम जोड़ेंगे तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर आएगी, लेकिन परमात्मा के साथ जब हम जुड़ेंगे तो सिर्फ उसकी अच्छाई आएगी, क्योंकि परमात्मा में कभी बुराई होती ही नहीं। तो ब्रह्म कुमारीज की स्थापना 1936 में हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में हुई थी, और उसके संस्थापक स्वयं परमात्मा शिव थे। यह संस्था दुनिया के 136-137 देशों में है, जिसमें से कम 4,500 से ज्यादा इसके सेवा केंद्र हैं। आज भी अभी जो इकोनॉमिक फोरम चल रहा था वहां पे भी अब योग और राजयोग को, हमारे जो बाहर के ब्रांचेस हैं, हमारी संस्था को बुलाया गया था हमारा जो मेडिटेशन सिखाने के लिए। कल देखा मैं बीबीसी में न्यूज चल रही थी, हेडलाइंस टुडे में थी, भास्कर में हम लोग को दीदी का फोटो था उसमें योग कराते हुए। अब लोगों को महसूस होने लगा है कि योग के जरिए आदमी की जिंदगी बदल सकती है। यहां राजयोग सिखाया जाता है, हम दो मिनट में सिर्फ आपको बेंजाम लेट हो रहे हैं हाँ योग के बारे में हम बताएंगे। यहां का जो रोग योग सिखाया जाता है, राजयोग और योग में फर्क क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। ये आजकल दुनिया में योग बहुत फेमस है, सब लोग सिखाते हैं, हर योग फायदेमंद होता है। बाबा रामदेव का योग है, पतंजलि का योग है, रविशंकर का योग है, हठ योग है, लेकिन हमको यह समझना पड़ेगा कि कौन सा योग हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जो मेडिटेशन और योग सिखाते हैं, बाहर का अगर योग हम सिखाते हैं हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए, प्राणायाम हमने कर लिया, अनुलोम विलोम हमने कर लिया, शरीर की बीमारी ठीक हुई, निसंदेह ठीक होती है, लेकिन हिंसा और अपराध क्या शरीर से होता है? हिंसा और अपराध कहां से होता है? आदमी की सोच से होता है। हमने शरीर को तो स्वस्थ रख लिया, आज हम हिष्ट पुष्ट हो गए, हम बाउंसर हो गए, हम पहलवान हो गए, लेकिन अगर हमारा मन दुष्ट है तो उसका भी हम दुरुपयोग करेंगे, और हो रहा है। परमात्मा ने जब योग सिखाया तो कहा कि नहीं, तुम पहले अपने मन के धरातल को बदलो, क्योंकि सबसे पहले हिंसा हमारे मन में पैदा होती है, सबसे पहले क्रोध हमारे मन में पैदा होता है, सबसे पहले निगेटिविटी हमारे मन में पैदा होती है, सबसे पहले थॉट हमारे मन में उठता है, फिर हमारे कर्म में आता है। और अगर मन को ही ठीक कर दिया जाए तो, अगर मन को ठीक कर दिया जाए तो कर्म अपने आप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपका सेंस काम करेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब तक इंसान को इस चीज का बोध नहीं होगा, वो बाहर से कितना भी संपन्न हो जाए सिर्फ उसका दुरुपयोग करेगा। आज 147 156 ये बने हैं किस लिए बने हैं? सिर्फ एक दूसरे का जान मारने के लिए। अब आप सोचिए, पूरे परमाणु बमों पर हमारी दुनिया सोई हुई है। आज हमारे पास परमाणु बम इसलिए बनाए जाते हैं कि एक देश से दूसरे देश की रक्षा करने के लिए। आप सोच लीजिए कि अगर एक परमाणु बम मिले तो दुनिया को 7 बार नष्ट किया जा सकता है। बनाने वाले ने नहीं सोचा कि जब परमाणु बम गिरेगा तो मैं बचूंगा क्या? इतनी बुद्धि आदमी की खराब हो गई है। अगर मान लीजिए उत्तर कोरिया और किम जोंग की अगर बुद्धि ठीक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, दुनिया के हित में हो जाए, तो क्या जंग की संभावना बनेगी? जंग की नहीं, तो असली युद्ध तो यहां हो रहा है। तो राजयोग आदमी के मन को बदलता है, थॉट को बदलता है, सोच को बदलता है, दृष्टिकोण को बदलता है। और जो व्यक्ति राजयोग करेगा, आप लिख के ले लीजिए कि उसके हाथों से अपराध दूर दूर तक चला जाएगा। वो सोच भी नहीं, क्योंकि सोच ही वहां से बदल जाएगी। जब ग्रास रूट चेंज हो जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा, परिवार की परिभाषा बदल जाएगी। आज परिवार की परिभाषा क्या है? हम दो हमारे दो, माना हम बीबी और हमारे बच्चे, आपके भाई बहन आपके माँ बाप सब किनारे हो गए। सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना पड़ रहा है कि अगर माँ बाप की रही तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी, आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अरे हमारी सोच इतनी खराब हो गई, हम इतने निकृष्ट हो गए कि जिस माँ बाप ने मुझे पैदा करके बड़ा किया, धूप न लगे उसको, धूल न लगे उसको, कहीं मिर्च न लग जाए उसको, आंधी न आ जाए, तूफान न आ जाए उसको, एक सेक न लग जाए, और जब बड़ा होने के बाद कह देते हैं कि हम और हमारे भी हमारे बच्चे हमारे परिवार है, कितना कष्ट होता है वो माँ बाप को। ये सोच हमारी कहां चली गई है? इस सोच को तरीका, ये सोच को बदलने के लिए ये राजयोग है। प्राणायाम अनुलोम विलोम से सोच नहीं बदलती, सिर्फ शरीर बदलता है, और शरीर बदल के कभी भी अच्छे समाज का विकास नहीं किया जा सकता। मन को बदल के अच्छे समाज का विकास किया जा सकता है। आज भाई भाई हैं, एक दूसरे का खून कर रहे हैं। जब बचपन में बच्चे रहते हैं तो एक साथ थाली में खा लेते हैं, बड़े होते हैं तो एक दूसरे का खून करने पर उतारू हो जाते हैं। कैसा समाज हम बना दिया हमने? उसको ठीक करने का काम राजयोग करता है। इसलिए परमात्मा ने राजयोग सिखाया। गीता में कहा कि मनमना भव। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, सिर्फ तुम अपना मन मेरे में लगाओ, क्योंकि जब हम मन परमात्मा में लगाएंगे तो परमात्मा की शक्तियां हमारे अंदर ट्रांसफर होंगी, और जब हमारा मन बदलेगा तो पूरा देश दुनिया सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। ये राजयोग परमात्मा ने आके राजयोग सिखाया, जो ब्रह्मा कुमारी बहने और भाई सारे सिखा रहे हैं दुनिया में। आज आप लोग पूरा कैंपस देख रहे होंगे, कैसा लग रहा है आपको? ऐसी बिल्डिंगें, ऐसे गार्डन, ऐसी सारी चीजें तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन यहां पे एक ऐसी चीज है जो अदृश्य, जो दिखती नहीं है और सबको अच्छी लग रही है, वो है माहौल, वातावरण। वो सिर्फ हमारी स्थिति से बनता है। जैसा इस आप मंदिर में चले जाइए, हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है तो शांति महसूस होती है। सिनेमा घर में चले जाइए तो अशांति होती है। सारा हमारे थॉट के लेवल पे है। तो हमारा राजयोग, परमात्मा ने जो राजयोग सिखाया, वो आदमी के थॉट लेवल को बदलता है, आदमी को अंदर से बदलता है, आदमी अंदर से सशक्त बनाता है। वो राजयोग बहनों ने सिखा रही है और परमात्मा का सिखाया हुआ है। ब्रह्मा कुमारी जी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय यहां माउंट आबू में है। दुनिया भर में हमारी ब्रांचेज हैं। समाज के सभी वर्गों में काम कर रहे हैं। ग्राम विकास 18-20 प्रभाग हमारे बने हुए हैं। यूनाइटेड नेशन में हमारी ब्रांचेज हैं। हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संस्थान के रूप में हैं। हमारे को पीस मैसेंजर अवार्ड मिले हैं इसी अच्छे कामों को देखते हुए। 6 पीस मेडल मिले हुए हैं। भारत सरकार ने हमको बहुत सारी चीजें दे रखी है, बहुत सारी उनके साथ हम लोग योजनाएं चला रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन की हमारी दादी जानकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये सब छोटी हो जाती हैं, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि इस समाज को बदलने और समाज को श्रेष्ठ बनाने का काम, नई दुनिया बनाने का काम चल रहा है परमात्मा का, और उसमें हम सब भागीदार हैं। और आपको भी ये परमात्मा का ही आदेश है जो आप यहां पे पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे लोग देश भर से होंगे। ब्रह्मा कुमारी के इंट्रोडक्शन में आपका इंट्रोडक्शन है। ब्रह्मा कुमारी का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये आपका इंट्रोडक्शन है। आप अपने को जानिए, अपने अस्तित्व को जानिए, उस अपने बनाने वाले को जानिए और उससे कनेक्ट हो जाइए। फिर देखिए उससे जो रोशनी निकलेगी, वो रोशनी कितना भी अंधेरा अज्ञानता का हो, प्रकाश ही फैलाएगा। और तब हम लोग एक अच्छी दुनिया बना पाएंगे, एक अच्छी दुनिया देख पाएंगे। ब्रह्मा कुमारी का यही संदेश है, ब्रह्मा कुमारी का यही प्रयास है, और इसलिए परमात्मा आपको बुलाया है इसमें सहभागी बनने के लिए। अब तो बिल्कुल टाइम ऐसा है जिसमें हमको हर किसी को सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है मैंने टाइम बहुत ले लिया है, और मेरा अगर कुछ मेरे से गलती वलती हो गई हो तो क्षमा याचना के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ कमलेश दीदी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया आप लोगों से बातचीत करने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि 5-6 दिन, 2-3 दिन है आप लोग, तो जरूर इसका लाभ उठाइए। ओम शांति।
बहुत धन्यवाद कोवल भाई जी का कि आपने बहुत सुंदर रीति से हमें क्लियर किया कि वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी क्या कार्य कर रही है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसे विशेष व्यक्ति को जो मेरे पास में ही है। वो आज जो आप सभी यहाँ बैठे हैं, उसको आप सबको आमंत्रण देने के निमित्त जो है वो कमलेश दीदी है हमारी। ये इनका बहुत स्ट्रांग संकल्प था इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और मैं कहूंगी कि उन्होंने जो है दिन रात अथक कार्य करते हुए इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कमलेश दीदी के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि आप जो है बचपन से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। पिछले 35 वर्षों से आप जो है समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रही है। वर्तमान समय जो है मुंबई सांताक्रूज ईस्ट में जो सेंटर है उसकी आप संचालिका है। आप जिस विंग में यहाँ पर आए हुए हैं, शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर है। आप बहुत ही कुशल वक्ता है। आपने देश विदेश में अनेक स्थानों पर जाकर के इस ईश्वरीय ज्ञान को फैलाया है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कमलेश दीदी को कि आप सेमिनार के बारे में हमें अवगत करें।
ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी के बारे में बहुत सुंदर कुछ बातें आपके सामने हमारे आदरणीय भ्राता कोमल भाई जी ने रखी। अभी जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है, चाहे आप बाय एयर करें, चाहे आप शिप से करें, चाहे आप बाय रूट करें या बाय ट्रेन करें, हर कोई आज ट्रैवल करना चाहता है और उसके बहुत से रीजन हैं। क्योंकि यू लर्न, यू कम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली थिंग्स, लॉट ऑफ चेंजेस कम इन योर थिंकिंग पैटर्न व्हेन यू ट्रैवल। मेरा खुद का ये अनुभव है कि जब आप ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, आपके सोच में बड़ा फर्क आता है। ऐसे मेरे अपने जीवन के बहुत मिसाल हैं, भारत के भी और बाहर के भी। एक बार एक यात्री जिसको घूमने जाना था, तो उसने गाइड से पूछा कि वहां मौसम कैसा होगा। गाइड ने जवाब दिया, मौसम वैसा ही होगा जैसा मैं पसंद करता हूं। तो उसने कहा, ऐसा कैसे? और गाइड ने कहा, मैं जब भी जाता हूं मुझे वैसा ही मौसम मिलता है जो मैं पसंद करता हूं। उसने कहा, लेकिन ऐसे कैसे? उसने कहा, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सीख लिया है, जैसा भी मिले उसे मुझे पसंद करना है। दिस इज द आर्ट वी नीड टू कल्टीवेट इन अवर लाइफ जर्नी। जीवन भी एक यात्रा है, इस जीवन यात्रा में इसी कला को मुझे आज डेवलप करने की आवश्यकता है, और उसके लिए चाहिए स्पिरिचुअल विजडम। और वो स्पिरिचुअल विजडम और वो स्पिरिचुअलिटी का रोल क्या है, उसके बारे में आने वाले 3 दिनों में हम आपस में शेयरिंग करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।